एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो है तो टेनिस पे, लेकिन सच पूछिए तो जिंदगी के हर खेल के लिए जरूरी है।
हाँ बिल्कुल, चाहे वो पढ़ाई हो, ऑफिस का काम हो, कोई कला हो या बस रोजमर्रा की चुनौतियां।
सही कहा, ये किताब एक अलग ही नजरिया देती है अपने प्रदर्शन को, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने का।
हम बात कर रहे हैं डब्ल्यू टिमोथी गैलवे की क्लासिक किताब द इनर गेम ऑफ टेनिस की।
द इनर गेम ऑफ टेनिस, अंदरूनी खेल।
बिल्कुल, और इसका जो मूल आइडिया है वो ये है कि हमारी असली रुकावट वो बाहर का कॉम्पिटिटर नहीं है,
तो फिर कौन है?
वो हमारे अपने अंदर है, हमारा शक, हमारा डर, हम जो खुद को कोसते रहते हैं ना, वो यही है वो इनर गेम जिसे जीतना है।
और आजकल के जमाने में तो ये और भी ज्यादा जरूरी लगता है, इतना डिस्ट्रैक्शन है, हर चीज का प्रेशर है।
हाँ बिल्कुल, ध्यान भटकना, दबाव महसूस करना, ये तो आम बात हो गई है।
तो ये किताब सिखाती है कि कैसे अपने अंदर के शोर को, इस अंदरूनी खेल को जीतकर बाहर की दुनिया में बेहतर परफॉर्म किया जा सकता है।
हाँ, और ज्यादा आसानी से, ज्यादा सहजता से। तो चलिए समझते हैं इसे।
शुरुआत लेखक से करते हैं, डब्ल्यू टिमोथी गैलवे। ये कौन थे? सिर्फ एक लेखक?
नहीं, सिर्फ लेखक नहीं, वो खुद एक खिलाड़ी थे और कोच भी। 1960 के दशक में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टेनिस टीम के कप्तान थे।
अच्छा, तो टेनिस का बाहरी खेल मतलब टेक्निक, स्ट्रेटजी, वो सब तो बखूबी जानते होंगे।
हाँ, जबरदस्त समझ थी उन्हें, लेकिन उनकी असली खासियत ये थी कि उन्होंने खेल के मानसिक पहलू पर बहुत गहरा ध्यान दिया।
मानसिक पहलू मतलब?
उन्होंने देखा कि कई बार जब वो खिलाड़ियों को बिल्कुल सटीक सलाह देते थे, मतलब टेक्निकली परफेक्ट इंस्ट्रक्शन,
हाँ,
तो उनका खेल सुधरने के बजाय बिगड़ जाता था।
अरे ऐसा क्यों?
खिलाड़ी ज्यादा सोचने लगते थे, खुद पर शक करने लगते थे, तनाव में आ जाते थे, उनकी जो नेचुरल फ्लो थी वो टूट जाती थी।
ये तो बड़ी अजीब बात है, मतलब अच्छी सलाह भी नुकसान कर सकती है।
यहीं से उनकी सोच बदली, उन्होंने जो पारंपरिक तरीका था कोचिंग का, बस ये करो वो मत करो वाला, उस पर सवाल उठाना शुरू किया।
तो उन्होंने क्या किया?
उन्होंने खिलाड़ियों को रट्टू तोते की तरह निर्देश याद कराने के बजाय अपने मन को शांत करना सिखाया, अपने शरीर पर ध्यान देना सिखाया, बिना जजमेंट के।
बिना जजमेंट के मतलब अपनी गलतियों पर गुस्सा किए बिना?
बिल्कुल, बस देखना कि क्या हो रहा है। और नतीजा, खिलाड़ी कम कोशिश करके ज्यादा तेजी से सीखने लगे, उनका खेल बेहतर हो गया।
कमाल है, मतलब फोकस इंस्ट्रक्शन देने वाले पर नहीं, सीखने वाले की जो अपनी अंदरूनी क्षमता है उसको जगाने पर था।
एग्जैक्टली, यही इनर गेम फिलॉसफी की जड़ है। और ये सिर्फ टेनिस तक नहीं रुकी, उन्होंने इसे गोल्फ, संगीत, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे एप्पल, AT&T में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में भी इस्तेमाल किया।
वाह, यानी ये सिद्धांत बहुत फंडामेंटल हैं।
बिल्कुल, तो अब आते हैं किताब पर। ये किताब असल में है क्या?
हाँ बताइए, टेनिस के अलावा इसमें क्या है?
जैसा हमने कहा, ये टेनिस का तो बस एक जरिया है, असल में ये परफॉर्मेंस साइकोलॉजी पर एक बहुत गहरी नज़र है। किताब का जो सार है वो हमें हमारे अंदर के दो सेल्फ से मिलवाता है।
दो सेल्फ, ये क्या है?
हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। पहला है सेल्फ वन, ये हमारा सचेत मन है, हमारा सोचने वाला हिस्सा, हमारा ईगो।
अच्छा, मतलब वो आवाज जो दिमाग में चलती रहती है?
हाँ वही, जो निर्देश देती है, घुटने मोड़ो, हमें डांटती है, फिर वही गलती कर दी, नतीजों की चिंता करती है, ये मैच हारना नहीं है, ये हमारा एनालाइजर है, हमारा जज है।
और दूसरा सेल्फ?
दूसरा है सेल्फ टू, ये हमारा अवचेतन मन है, हमारा सहज ज्ञान, हमारा शरीर और उसकी अपनी समझ।
शरीर की समझ?
हाँ सोचिए, हमने चलना कैसे सीखा था? कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल तो नहीं था, हमने बस देखा, कोशिश की, गिरे, उठे और सीख गए। ये सेल्फ टू की ताकत है, वो हमारा करने वाला हिस्सा है।
समझ गया, सेल्फ वन है सोचने वाला, बोलने वाला जज, और सेल्फ टू है करने वाला, महसूस करने वाला शरीर।
बिल्कुल, और किताब का मेन पॉइंट ये है कि ज्यादातर समय हमारा सेल्फ वन वो सेल्फ टू के काम में बहुत ज्यादा दखल देता है।
अच्छा, मतलब वो जो लगातार बोलता रहता है वो असल में मदद नहीं कर रहा?
मदद करने की कोशिश कर रहा है, पर उसकी टोका टाकी, उसका डर, उसके जजमेंट्स, वो सेल्फ टू की जो नेचुरल काबिलियत है उसको ब्लॉक कर देते हैं।
और इसी से फिर निराशा होती है, चिंता बढ़ती है और परफॉर्मेंस खराब होती है। है ना?
एग्जैक्टली. तो ये किताब हमें तरीके सिखाती है कि कैसे सेल्फ वन को थोड़ा शांत किया जाए.
और सेल्फ टू पर भरोसा करना सीखा जाए.
हाँ, ये एक तरह की मेंटल स्किल है, आलोचना करने के बजाय गैर आलोचनात्मक जागरूकता की तरफ बढ़ना.
और जोर लगाकर कोशिश करने की बजाय, वो क्या था, सहज एकाग्रता पाना.
बिल्कुल. ये सुनने में आसान लगता है, पर इसे करना, यही असली खेल है.
चलिए इसी इनर गेम में थोड़ा और गहरे चलते हैं. गैलवे की वो लाइन मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगी, आपके अपने सिर के अंदर का प्रतिद्वंदी नेट के दूसरी तरफ वाले प्रतिद्वंदी से कहीं ज्यादा मजबूत होता है.
हाँ, ये तो इस किताब का सार है एक तरह से. असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है.
और ये लड़ाई सेल्फ वन और सेल्फ टू के बीच है.
बिल्कुल. जब सेल्फ वन चीखता है, अरे बैकहैंड ठीक से मारो, तो वो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन नहीं है, वो टेंशन पैदा करता है
हाँ, बॉडी टाइट हो जाती होगी.
और ध्यान बढ़ जाता है. अब सेल्फ टू, जो शायद जानता है कि बैकहैंड कैसे मारना है, वो उस टेंशन और डिस्ट्रैक्शन के कारण कर ही नहीं पाता.
तो गैलवे कहते हैं कि सेल्फ वन को दुश्मन मानकर खत्म नहीं करना है.
नहीं, बिल्कुल नहीं. उसे खत्म करना मुमकिन भी नहीं. लक्ष्य है उसे शांत करना सीखना, उसे एक ऑब्जर्वर बनाना, दखल देने वाला मैनेजर नहीं.
ठीक है, पर ये होगा कैसे? ये जो लगातार बकबक करता रहता है, इसे शांत कैसे करें? इससे लड़ना तो बेकार है जैसा आपने कहा.
हाँ, क्योंकि लड़ने वाला भी तो सेल्फ वन ही है. रास्ता लड़ाई का नहीं है, रास्ता है ध्यान मोड़ने का.
ध्यान मोड़ने का कैसे?
गैलवे की पहली और शायद सबसे जरूरी तकनीक है आलोचना या जजमेंट से मुक्ति पाना. मतलब जो भी हो रहा है उसे अच्छा या बुरा कहना बंद कर दें.
अच्छा, जैसे अगर मैंने शॉट खराब मारा तो खुद को कोसू नहीं?
हाँ, मैंने बहुत बुरा शॉट मारा, सोचने के बजाय सिर्फ तथ्य देखें, गेंद नेट में लगी या गेंद लाइन से बाहर गिरी. इसे गैलवे गैर आलोचनात्मक अवलोकन, नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन कहते हैं.
लेकिन इससे होगा क्या, सिर्फ देखने से?
जब हम जजमेंट हटाते हैं तो उसके साथ जुड़ा जो इमोशनल बोझ है, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, शर्मिंदगी, वो हट जाता है.
हाँ, ये तो है.
मन शांत होता है, तनाव कम होता है, और जब तनाव कम होता है तो सेल्फ वन अपने आप बेहतर काम करने लगता है. गैलवी की एक और जबरदस्त लाइन है, जजमेंट से तनाव होता है, जागरूकता बस देखती है कि क्या है.
वाह, मतलब सिर्फ देखना बिना लेबल लगाए, वही सुधार की पहली सीढ़ी है.
बिल्कुल, ये बहुत पावरफुल आइडिया है.
और क्या तरीके हैं इस सेलफोन को शांत रखने के?
दूसरा तरीका है ध्यान केंद्रित करना, फोकसिंग अटेंशन. सेलफोन को कोई ऐसा काम दे दो जो बिल्कुल सिंपल हो और वर्तमान में हो.
जैसे?
जैसे गैलवे टेनिस में सुझाव देते हैं कि जब गेंद आपकी तरफ आ रही है तो उसकी सीम, मतलब उसकी सिलाई की रेखाओं पर फोकस करो. या एक अभ्यास है बाउंस हिट.
बाउंस हिट, वो क्या है?
जब गेंद जमीन पर टप्पा खाए तो मन में कहो बाउंस, और जब रैकेट से मारो तो कहो हिट. बस इतना ही.
अच्छा, इससे क्या होगा?
इससे आपका दिमाग उस पल में रहेगा, वो भूतकाल की गलतियों या भविष्य की चिंता में नहीं भटकेगा. सेल्फ वन को एक काम मिल गया तो वो फालतू की बातें नहीं सोचेगा.
ये भी इंटरेस्टिंग है, दिमाग को व्यस्त रखो लेकिन सिंपल चीज में. और तीसरा तरीका?
तीसरा है कल्पना करना और महसूस करना, विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग. सेल्फ वन शब्दों से सोचता है, लेकिन सेल्फ टू तस्वीरों और एहसासों से सीखता है.
अच्छा, मतलब?
तो खुद को इंस्ट्रक्शन देने के बजाय बॉल को ऊपर मारो, मन में उस सही शॉट की तस्वीर देखो, विजुअलाइज करो, और उससे भी ज्यादा जरूरी, उस शॉट को मारते हुए कैसा महसूस होगा, उस फीलिंग पर ध्यान दो.
मतलब बॉडी की सेंसेशन पे.
हाँ, सेल्फ टू इस फील से बहुत जल्दी सीखता है. बॉडी लैंग्वेज और इमेजरी उसकी भाषा है.
तो ये तीन तरीके, जजमेंट छोड़ना, फोकस करना और विजुअलाइज फील करना, ये सब सेल्फ वन को शांत करने के लिए हैं.
हाँ, ताकि सेल्फ टू खुलकर अपना काम कर सके. और जब सेल्फ वन शांत हो जाए तब अगला कदम आता है, सेल्फ टू पर भरोसा करना.
उस पे भरोसा करना जिसने चलना सीखा था.
एग्जैक्टली. हमें याद रखना होगा कि हमारे अंदर सीखने की एक अद्भुत प्राकृतिक क्षमता है. सेल्फ टू जानता है कि कैसे सीखना है, कैसे एडजस्ट करना है.
तो कोच का रोल यहाँ बदल जाता है.
बिल्कुल. कोच का काम सिर्फ निर्देश देना नहीं रह जाता, उसका काम होता है खिलाड़ी की जागरूकता बढ़ाना, सवाल पूछना.
कैसे सवाल?
जैसे, इस शॉट पर तुम्हें रैकेट का फेस कैसा महसूस हुआ, या गेंद नेट के कितनी ऊपर से गई, इस पर ध्यान दिया, इससे खिलाड़ी का ध्यान उसके अपने अनुभव पर जाता है, सेल्फ टू जानकारी सोखता है और खुद को ठीक करता है।
यहाँ गैलवे का वो गुलाब के बीज वाला रूपक याद आता है ना?
हाँ, बहुत सुंदर रूपक है कि जैसे हम एक बीज बोते हैं और भरोसा रखते हैं कि उसमें पूरा गुलाब बनने की क्षमता है, बस उसे सही माहौल और पोषण चाहिए।
वैसे ही हमें अपनी सीखने की क्षमता पर, अपने सेल्फ टू पर भरोसा करना चाहिए। गलतियों को फेलियर नहीं बल्कि सीखने का हिस्सा मानना चाहिए।
सही कहा, और यही नजरिया पुरानी बुरी आदतों को बदलने में भी काम आता है।
वो कैसे?
आदतें बदलना तो बहुत मुश्किल होता है।
पारंपरिक तरीका है पुरानी आदत से लड़ना, उसे जबरदस्ती दबाना। ये फिर से सेल्फ वन का संघर्ष है।
हाँ, और वो अक्सर काम नहीं करता।
गैल्वे का तरीका अलग है। पहले पुरानी आदत को बिना जज किए देखो, समझो कि वो कब और कैसे होती है, फिर नई आदत को प्रोग्राम करो, उसकी कल्पना करो, उसे महसूस करो,
और फिर
उसे होने दो, सेल्फ टू पर छोड़ दो।
हाँ, बिना जोर जबरदस्ती के सेल्फ टू धीरे धीरे नई आदत को अपना लेगा। ट्रस्ट द प्रोसेस।
और एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में क्या? हम तो सोचते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है।
गैल्वेस फर्क को समझाते हैं। एक होती है तनाव भरी, जोर लगाकर की गई एकाग्रता, जो सेल्फ वन की कोशिश होती है,
हाँ,
और दूसरी होती है शांत, सहज एकाग्रता, जब आप किसी काम में इतने खो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि समय कहाँ गया, आप पूरी तरह से उस पल में होते हैं।
जिसे फ्लो कहते हैं या जोन में होना।
बिल्कुल, वो सच्ची एकाग्रता है, वो मेहनत से नहीं आती, वो उस काम में गहरी रुचि और डूब जाने से आती है। सेल्फ की बकबक बंद हो जाती है।
लेकिन ये सब शांत मन, सहजता, ये कंपटीशन में कैसे चलेगा जब सामने वाला आपको हराने के लिए खेल रहा हो?
ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और गैल्वे का जवाब यहाँ भी मतलब काफी अलग है।
क्या कहते हैं वो?
वो कहते हैं कि अपने प्रतिद्वंद्वी को दुश्मन की तरह मत देखो, उसे एक जरूरी पार्टनर की तरह देखो।
पार्टनर दुश्मन को?
हाँ, वो पार्टनर जो आपको चुनौती दे रहा है, वो आपको अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंचने में मदद कर रहा है। उसके बिना आप अपना बेस्ट कैसे दोगे?
वाह, ये नजरिया तो पूरा गेम ही बदल देता है। मतलब प्रतिद्वंद्वी एक तरह से आपकी मदद कर रहा है।
बिल्कुल, वो उत्कृष्टता के इस डांस में आपका साथी है। ये सोचिए कितना तनाव कम कर देती है ना?
बिल्कुल, और इसी से जुड़ी है फिर जीत की परिभाषा भी।
सही पकड़ा। गैल्वे कहते हैं कि सिर्फ स्कोरबोर्ड पर जीतना वो बाहरी चीज है, वो हमेशा हमारे कंट्रोल में भी नहीं होती।
हाँ, कभी लक भी होता है, कभी सामने वाला बहुत अच्छा खेल जाता है।
तो असली जीत क्या है? असली जीत है इनर गेम जीतना।
मतलब?
मतलब अपने अंदर के डर पर काबू पाना, अपने शक को हराना, बिना तनाव के पूरी क्षमता से प्रयास करना, उस कोशिश का, उस प्रक्रिया का आनंद लेना।
अच्छा,
तो फोकस नतीजे से हटकर कोशिश की क्वालिटी पर आ जाता है।
हाँ, और अपनी सीमाओं को पार करने पर
ये जीत ज्यादा गहरी है, ज्यादा संतोष देने वाली है।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा के जो मुख्य सबक हैं उन्हें एक बार फिर से देखें।
हाँ जरूर
सबसे पहली बात तो यही हुई
जी।
कि सेल्फ वन और सेल्फ टू के अंदरूनी खेल को समझना,
जी
ये जानना कि असली रुकावट हमारे अंदर ही है।
बिल्कुल, और सेल्फ वन को शांत करना सीखना। दूसरा, गैर आलोचनात्मक जागरूकता की शक्ति। चीजों को बस देखना बिना अच्छा बुरा कहे, यही सुधार का रास्ता खोलता है।
तीसरा, अपने शरीर की सहज बुद्धि यानी सेल्फ टू पर भरोसा करना। वो बहुत कुछ जानता है, हमें बस उसे सुनना है।
चौथा, ये समझना कि बहुत ज्यादा कोशिश करना अक्सर उल्टा पड़ जाता है। सहजता, रिलैक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा असरदार है।
पांचवा, वर्तमान पल में रहना, अभी में फोकस करना, ना कि पिछली गलती पर पछताना या अगले पॉइंट की चिंता करना।
और छठा, सबसे जरूरी शायद, जीत की परिभाषा को बदलना। बाहरी नतीजों से ज्यादा अंदरूनी अनुभव पर, प्रयास की क्वालिटी पर और मानसिक बाधाओं को पार करने पर ध्यान देना।
ये सारी बातें सोचें तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह दिखती हैं। परीक्षा का डर,
गाड़ी चलाना सीखते समय की घबराहट,
ऑफिस में प्रेजेंटेशन देते वक्त की चिंता, ये सब सेल्फ वन ही पो है जो हमें परेशान करता है।
बिल्कुल, किताब में कुछ लाइनें तो ऐसी हैं जो सीधे दिल पर लगती हैं।
हाँ, जैसे वो पहली वाली, आपके अपने सिर के अंदर का प्रतिद्वंदी नेट के दूसरी तरफ वाले प्रतिद्वंदी से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। ये तो मतलब मूल मंत्र है।
यह और विश्वास रखना सिखाता है अपनी ग्रोथ पर।
और वो प्रैक्टिकल सलाह, मन से लड़ना काम नहीं करता, जो काम करता है वो है उसे केंद्रित करना सीखना। ये बताता है कि करना क्या है, लड़ो मत, फोकस बदलो।
एक और जो मुझे बहुत गहरी लगती है, जजमेंट से तनाव होता है, जागरूकता बस देखती है कि क्या है।
या आलोचना और अवलोकन का फर्क साफ करती है।
चलिए अब जरा ये सोचते हैं कि इन आइडियाज को हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, टेनिस कोर्ट से बाहर।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। जैसे किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है।
हाँ, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है।
तो वो डर क्या है? वो सेल्फ वन की आवाज है, लोग क्या सोचेंगे, मैं भूल गया तो, सब मुझ पर हंसेंगे।
हाँ,
इनर गेम का तरीका होगा कि इस आवाज से लड़ने के बजाय अपना ध्यान कहीं और लगाओ, जैसे अपनी सांस पर ध्यान दो, या ऑडियंस में किसी एक जाने पहचाने चेहरे पर फोकस करो, या जो मैसेज आप देना चाहते हो उसकी फीलिंग पर ध्यान दो। इससे सेल्फ वन शांत हन जाएगा।
हाँ, उसका ध्यान बढ़ जाएगा। और सेल्फ टू यानी आपकी बोलने की जो नेचुरल क्षमता है, उसे मौका मिलेगा बाहर आने का।
अच्छा, और ऑफिस में लीडरशिप रोल में?
देखिए, माइक्रो मैनेज करना, हर छोटी चीज में टोकना, ये सेल्फ वन का काम है। ये दिखाता है कि आपको अपनी टीम पर भरोसा नहीं है।
हाँ।
इनर गेम का अप्रोच होगा, अपनी टीम पर भरोसा करो, उन्हें लक्ष्य दो और रास्ता खोजने की आजादी दो, फीडबैक दो, लेकिन बिना जजमेंट के। सेल्फ टू पर भरोसा करो, उनके भी और अपने भी।
और कुछ नया सीखते समय, जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई नई भाषा?
वहाँ तो ये बिल्कुल फिट बैठता है। हर गलती पर खुद को कोसना बंद करें। मैं कितना बेवकूफ हूँ के बजाय सोचें, अच्छा ये सुर थोड़ा गलत लगा, अगली बार ध्यान रखूंगी।
मतलब गलती को डेटा की तरह देखो, जजमेंट की तरह नहीं।
बिल्कुल, और प्रक्रिया का आनंद लो। परफेक्ट होने की कोशिश में सीखने का मजा मत खो, सेल्फ टू को खेलने दो।
तो कुल मिलाकर इस किताब से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि हमारी असली पोटेंशियल वो ज्यादा मेहनत करने या ज्यादा इंस्ट्रक्शन रटने से नहीं खुलती,
बल्कि अंदर की जो रुकावटें हैं, जो हस्तक्षेप है, उसे हटाने से खुलती है। सेल्फ वन और सेल्फ टू के बीच एक भरोसे का, एक दोस्ती का रिश्ता बनाना, यही कुंजी है।
मेरे लिए तो सबसे चौंकाने वाली बात यही थी कि कैसे कम कोशिश करना ज्यादा असरदार हो सकता है। हम तो हमेशा ट्राई हार्डर सुनते आए हैं।
हाँ, ये बिल्कुल उल्टा लगता है। और मेरे लिए ये जानना कि सिर्फ चीजों को बिना जजमेंट के देखना, मतलब सिर्फ जागरूकता ही बदलाव ला सकता है, ये बहुत पावरफुल था।
और मेरे लिए जीत की उस नई परिभाषा ने बहुत कुछ बदल दिया। फोकस बाहरी नतीजों से हटाकर अंदरूनी अनुभव पर लाना, ये बहुत शांति देता है। और ये एहसास कि ये इनर गेम तो हर पल हर जगह चल रहा है।
हाँ, तो श्रोताओं के लिए एक छोटा सा प्रयोग छोड़ जाते हैं।
हाँ, क्या?
अगले कुछ घंटे या जब भी आपको याद आए, बस ध्यान दीजिए अपने सेल्फ वन की आवाज पर। वो कब बोलता है, क्या कहता है, किस टोन में।
उसे बदलना नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। बस एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह उसे नोटिस करना है, बिना किसी जजमेंट के। देखिए, आपको अपने अंदरूनी खेल के बारे में क्या पता चलता है, शायद कुछ इंटरेस्टिंग मिले।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।